आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने एक बार फिर भारतीय राजनीति में हलचल ला दी है। इस बार उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध को ट्रेड डील की चेतावनी द्वारा रोकने के अलावा 4 या 5 लड़ाकू विमानों के गिरने की बात भी कही। राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान को लेकर एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस से लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सवाल किया, मोदी जी 5 जहाजों का सच क्या है? देश को जानने का हक है। लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सरकार का बचाव करते हुए बिना राष्ट्रपति ट्रंप का नाम लिए सख्त लहजे में आलोचना की।
डोंट बी गाइडेड बाय नैरेटिव्स आउटसाइड। ऑल डिसीजंस इन दिस कंट्री अ सोवरेन नेशन आर टेकन बाय इट्स लीडरशिप। देयर इज नो पावर ऑन द प्लेनेट टू डिक्टेट इंडिया हाउ टू handle its affairs. We do live in a nation and nations that are a committee. We work in togetherness, we work in tandem. We have mutual respect, diplomatic dialogues. But at the end of the day, we are sovereign. We take our own decisions. But is it required to play every bad ball?
कांग्रेस का कहना है कि उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप की बातों और पहलगाम आतंकी हमले की जांच का जवाब किसी और से नहीं बल्कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी से संसद में चाहिए। विपक्षी इंडिया ब्लॉक के 24 राजनीतिक दलों ने संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले एक ऑनलाइन बैठक कर सरकार को मुख्यतः 8 मुद्दों पर घेरने की रणनीति बनाई है। इन मुद्दों में बिहार में जारी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण, पहलगाम आतंकी हमला और राष्ट्रपति ट्रंप का बयान विशेष रूप से शामिल हैं। कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद तिवाड़ी ने इस बारे में मीडिया से बात की।
पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, राष्ट्रपति अमेरिका ट्रंप के 24 बयान, SIR बिहार कमीशन का, इलेक्शन कमीशन किस तरह लोकतंत्र को गिरवी रख रहा है, फॉरेन पॉलिसी चाइना के मुताबिक गाजा और पाकिस्तान के लिए, डिलिमिटेशन, फिर एट्रोसिटीज ऑन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, विमेन और माइनॉरिटी, कुल मिलाकर ये बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में देश के लिए चिंता व्यक्त करते हुए और एकजुट होकर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के हितों की अनदेखी कर रही है, उसके खिलाफ लोकतांत्रिक ढंग से, शांतिपूर्वक ढंग से हम चाहेंगे कि पार्लियामेंट चले।
1 महीने लंबा मॉनसून सत्र आज 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस दौरान केंद्र सरकार की कोशिश 8 विधेयकों को पास करने की रहेगी। सरकार और विपक्ष के बीच इन अंतर विरोधों के चलते संसद में हंगामा होने के पूरे आसार हैं। इसके साथ ही मोदी सरकार संसद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित की गई आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली उच्च न्यायालय के निलंबित न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाने की कोशिश में है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव को लेकर उन्होंने सांसदों से बात कर ली है और सभी राजनीतिक दल इसके पक्ष में हैं। लेकिन इस प्रकरण में एक नया नाटकीय मोड़ भी आ गया है। न्यायमूर्ति वर्मा ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट और महाअभियोग की सिफारिश रद्द करने का अनुरोध किया है। उनका तर्क है कि उनके आवास के बाहरी हिस्से में नकदी बरामद होने मात्र से यह साबित नहीं होता कि वे इसमें शामिल हैं। आंतरिक जांच समिति ने यह भी नहीं तय किया कि नकदी किसकी है, परिसर में कैसे मिली है और उसका क्या हुआ। समिति के निष्कर्षों पर सवाल उठाते हुए उनका तर्क है कि ये अनुमान पर आधारित हैं। उन्होंने अपनी याचिका में 5 सवालों के जवाब मांगे हैं और 10 तर्क दिए हैं। न्यायमूर्ति वर्मा ने आरोप लगाया है कि जांच समिति ने उन्हें पूरी और निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिए बिना ही प्रतिकूल निष्कर्ष निकाले। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड की अध्यक्षा जेनिफर होमेडी ने भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो का साथ देते हुए अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर मीडिया में आई खबरों को अटकलें करार देते हुए अंतिम जांच रिपोर्ट का इंतजार करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े स्तर पर की जा रही जांच में समय लगता है जिसका इंतजार करना चाहिए। उन्होंने मीडिया से अपने सभी प्रश्न भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो से पूछने के लिए कहा। उनका यह बयान अमेरिकी अखबारों द्वारा दुर्घटना का दोष विमान चालकों पर डालने के बाद आया है, जिसका भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो और विमान चालकों की संस्थाओं ने सख्त विरोध किया था। इस बीच विमान दुर्घटना के कई अन्य कारणों की भी गहनता से जांच की जा रही है। इसमें विमान की टेल में इलेक्ट्रिकल मालफंक्शनिंग की संभावना को भी देखा जा रहा है। चीन ने शनिवार को सुदूर पूर्वी भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के समीप दक्षिण पूर्वी तिब्बत, जिसे चीन जीजैंग कहता है, में यारलुंग जांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बड़ा बांध बनाने की विधिवत शुरुआत की। इसकी घोषणा स्वयं चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने की, जो मौके पर मौजूद थे। भारत ने इस बांध का लगातार विरोध किया है। चीन की जिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार इस परियोजना में 5 जल विद्युत संयंत्र होंगे, जिन पर 1.2 ट्रिलियन यानी 1.2 खरब युआन यानी लगभग 167 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश होगा। इनसे प्रतिवर्ष 300 अरब किलोवाट ऊर्जा उत्पन्न होगी, जो प्रतिवर्ष 30 करोड़ लोगों की ऊर्जा जरूरतें पूरा करने के लिए काफी हैं। चूंकि भारत और बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र के निचले तटवर्ती क्षेत्र में आते हैं और करोड़ों लोगों का जीवन चक्र ब्रह्मपुत्र से जुड़ा है, इसलिए वे इस पर लगातार चिंता जता चुके हैं। लेकिन चीन का कहना है कि इस परियोजना से ब्रह्मपुत्र के बहाव पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि भारत को ब्रह्मपुत्र के बहाव को चीन द्वारा हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाने की चिंता है। पर्यावरणविदों ने भी इस परियोजना से हिमालय पर गंभीर प्रभाव पड़ने की चेतावनी दी है। भारत इस नए घटनाक्रम पर क्या रुख अपनाता है, ये देखना अभी बाकी है। तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।